तो ये जीव विपाकी कर्म का अर्थ है कि जिसका फल डायरेक्ट जीव को मिलता है। तो अपयश जो होता है उस जीव का अपयश होता है। तो सीता का जो अपयश हुआ था लोकापवाद, उसका कारण ये अयशस कीर्ति नाम कर्म का उदय था। और यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय चौथे गुणस्थान से आगे नहीं होता, ये सिद्धांत है। इसका मतलब ये हुआ कि सीता उस समय चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, चौथे गुणस्थान के ऊपर। ये चौथे गुणस्थान का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि लेकिन व्रतों से रहित। तो जो धर्म में स्थित जीव होता है वो शत्रु वर्ग के प्रति भी क्षमा भाव धारण करता है, पर द्रव्य को छोड़ देता है और पर स्त्री को माता के समान गिनता है, तब तक उसकी सर्वत्र कीर्ति होती है। देखो चारित्र का प्रभाव है कि उसकी सर्वत्र कीर्ति होती है। और तासवत्थ विहवे विसास, और तब तक सब स्थानों पर वो विश्वस्त बना रहता है, सब लोग उस पर विश्वास करते हैं, किसी को अविश्वास नहीं होता व्रति पर। और तासवम पिय भाषई, और तब तक जब तक वो धर्मात्मा है, जब तक व्रती है, जब तक चारित्रवान है, तब तक वो सबके प्रति प्रिय भाषण माने संभाषण जो होता है उसका वार्तालाप वो मधुर होता है। और ताशुद्धम मानसम गुणी, और तब तक वो अपने मन को शुद्ध बनाए रखता है जब तक धर्म में स्थित है। उत्तम धम्मेण जुदो होदितिरिक्खो वि उत्तमो देवो चंडालो विसुरिंदो उत्तम धम्मेण संभवति। उत्तम धर्म से युक्त तिरिक्खो भी, वो भले पशु भी क्यों न हो, तिर्यंच भी, उत्तमो देवो होदी, उत्तम देव हो जाता है। और उत्तम धम्मेण, उत्तम धर्म द्वारा चंडालो भी सुरिंदो संभवति। चंडाल भी देवों में सुरेंद्र बन जाता है। अब सुरेंद्र का तात्पर्य यहाँ पर टीकाकारों ने लिया है, उत्तम देव सुरेंद्र प्रतींद्र सामानिको वा संभवति जायत। देवों का इंद्र भी बन सकता है, प्रतींद्र भी बन सकता है, सामानिक देव भी बन सकता है। सामानिक बृहस्पति को कहते हैं, देवों में जो बृहस्पति होते हैं ना, सुरगुरु जिनको कहा है, कस्ते क्षम सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या, वो सामानिक देव होते हैं। सामानिक का मतलब बिल्कुल इंद्र के समान होते हैं, सिर्फ इंद्र जैसे आदेश देता है और सभा के मध्य में सिंहासन पर राजा जैसे विराजमान होता है, वो स्थान उनका नहीं होता, बाकी पूरा वैभव आयु बल परिवार इंद्र के समान होता है। बस आज्ञा रूप ऐश्वर्य उनके पास नहीं होता, वो सामानिक कहलाते हैं। समाने भवाह सामानिकाह, इंद्र के समान होने वाले जो होते हैं वो सामानिक होते हैं। तो उनका पितृगुरूपाध्याय तुल्याः, देवता लोग उनको पिता के समान सम्मान देते हैं, गुरु के समान सम्मान देते हैं, और उपाध्याय यानी शिक्षक के समान आदर देते हैं, वो सामानिक देव कहते हैं। तो उनको प्रतींद्र सामानिकों का है। प्रतींद्र सामानिक का मतलब सामानिक बहुत सारे हैं। फिर प्रतींद्र जो होते हैं, प्रतींद्र का मतलब होता है लोकपाल। पड़ी इंदा इंदस्य, जम्बुदीव पंडित्ति ग्रंथ में ये एक गाथा आई है जिसमें बताया कि प्रतींद्र यानी लोकपाल देव। लोकपाल कौन से? तो कुबेर, सोम, यम और वरुण, ऐसे चार लोकपाल होते हैं। तो इन चार में से एक लोकपाल कोई इंद्र के प्रतींद्र का पद धारण करता है। तो इस प्रकार ऐसे ऊंचे पद को वो चांडाल भी, कैसा चांडाल है? तो जिनोक्त धर्मेण सम्यक्त्व अनुव्रतादि लक्षणेन कृत्वा, सम्यक्त्व और अनुव्रत रूपी जिन धर्म को पालने वाला जो चांडाल है, वो चांडाल भी उत्तम देव पद को प्राप्त हो जाता है। और यति धर्म को पालने वाले की तो क्या स्थिति होगी? श्रावक धर्मेण सहित गृहस्थ, श्रावक धर्म से सहित गृहस्थ होगा तो सौधर्माद्यच्युतांत कल्पवासी देव, स्वधर्म से अच्युत माने पहले से 16वें स्वर्ग तक का देव बन जाएगा स्वर्ग में। कौन सा पद हो सकता है उसका? इंद्र, प्रतींद्र, सामानिक आदि को जायते। और यति धर्मेण युत, यति धर्म से युत अगर हुए तो सौधर्म आदि सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत निवासी उत्तमो देवो जायते, सकल कर्म क्षय कृत्वा सिद्धोपि जायते। सब कर्मों का क्षय अगर हो जाए तो फिर सिद्ध भगवान भी बन सकते। तिरंचश्च कोत्कृष्टेन जायन्ते इति चेत, तिरंच ज्यादा से ज्यादा कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं ऐसी आशंका उठे किसी के मन में, तो फिर आचार्य कहते हैं त्रैलोक के सारे प्रोक्तम च। त्रैलोक के सार नाम का ग्रंथ है आचार्य निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का लिखा हुआ, उसमें नरतिरिय देश अयदा उक्कसेणच्युदोत्तिनि गंथा नर अयद देश मिच्छा गे विज्जन्तो तिगच्छन्ति सव्वट्ठोत्ति सुदिट्ठि महवै भोग भूमिजा सम्मा सोहम मदुगम मिच्छा भवनतियम तावसाय वरम चरियार चरियाय परिवज्जा बम्मोत्तर पदोत्ति आजीवा अणुदिश अणुत्तरादो चुदान केशव पदंजन्ति। बोले कि नर तिर्यंच देश और अयत, देश और अयत का मतलब होता है देशव्रति और अव्रति, ऐसे मनुष्य और तिर्यंच उक्कसेण अधिक से अधिक अच्युतोत्ति, अच्युत यानी सोलहवें स्वर्ग तक जाते हैं, और निगंथा नरा निर्ग्रंथ जो मनुष्य है पुरुष, नर लिखा है नर यानी पुरुष, वो अयद देश में इच्छा, चाहे वो अयत यानी शुरू के चार गुण स्थान में हो मुनिपद में, या देश यानी पंचम गुण स्थान वाले हो और मिथ्या दृष्टि हो, तो भी गेवेद जंतोत्ति गच्छन्ति, अभव्य जीव भी चले जाते हैं ना ग्रैवेक पर्यंत, वो महाव्रत का प्रभाव है। और सव्वट्ठोत्ति सुदिट्ठि और सम्यक दृष्टि जो महाव्रति है वो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। और भोग भूमि जा सम्मा सोहम मधुगम, भोग भूमि जो सम्यक दृष्टि है वो सौधर्म और ईशान ऐसे दो स्वर्गों में जाते हैं। और मिच्छा अगर मिथ्या दृष्टि भोग भूमिया है तो भवनतियम भवनत्रिक में जाते हैं। और तावसाया वरम और तापस जो होते हैं पंचाग्नि तपाधिक तपने वाले जो तपस्वी होते हैं अन्य मत में, वो भी वरम अधिक से अधिक भवनतियम गच्छन्ति भवनत्रिक में चले जाते हैं। चरियाय परिवज्जा फिर जो चरक चरयाय परिवज्जा, चरक मत को मानने वाले और परिव्राजक मत को मानने वाले परिवाज्जा ये ब्रह्मोत्तर पदों ते गच्छन्ति। इसका क्या तात्पर्य निकल, ये क्या है कि आगे पीछे से संबंध जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चरक माने नागा बाबा बोलते हैं ना अन्य मतों में वो, और परिव्राजक, परिव्राजक भी दंडी साधु होते हैं ना, ऐसे ऐसे दंडा रखते हैं हाथ में और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख करके माला फेरते हैं, वो दंडी परिव्राजक होते हैं। तो ये ब्रह्मोत्तर पद तक के चले जाते हैं, वो उनके यहाँ ऐसी चर्चा भी आती है कि ब्रह्म पद में ब्रह्म में लीन हो गए, तो वो ब्रह्मोत्तर नाम का जो स्वर्ग छठा स्वर्ग है वहाँ तक जा सकते हैं। और आजीवा आजीवक जो होते हैं वो आजीवक यानी वो परमहंस साधु होते हैं, वो परमहंस जो होते हैं वो भी अंत में सब वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं। जैसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती हुए हैं मुंगेर में योग आश्रम चलाया उन्होंने, फिर स्वामी चिन्मयानंद जी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, तो उन्होंने भी अंत में सब छोड़ छाड़ करके फिर एक वस्त्र धारण किया कटी वस्त्र जिसको कोपीन बोलते हैं एलक के समान, लेकिन एलक पद अलग है वो जैन आमनाय में एक अलग उसका क्रम है। तो उन्होंने उस अवस्था फिर गुप्त वास उन्होंने मतलब अज्ञात वास भी किया, और ऐसा करते करते फिर आखिरी अवस्था उनके यहाँ जो रहती है वो सब वस्त्रों को छोड़ देते हैं, तो वो सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं। बोले आजीवा आजीवक जो होते हैं ना साधु वो सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं, ऐसा इन्हें दिया है। अच्युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। तो अनुदिश और अनुत्तर से आने वाले जीव केशव पद को प्राप्त नहीं होते, तथा चोक्तम, कहा भी है, क्या कहा है, एक ही भाव स्तोत्र का 12वां काव्य है। प्राप दैवं तवनुति पदैर् जीवकेनोपदिष्टैः पापाचारी मरण समये सारमे योपि सौख्यम कसंदेहो यदुपलभते वासवश्री प्रभुत्वं जलपंजापेर मणिविरमलैस्त्वं नमस्कार चक्रम तव नुति पदैः। आपके नमस्कार संबंधी जो पद है, आपकी स्तुति संबंधी जो पद है, वो जीवकेन उपदिष्टे, जीवक यानी जीवंदर कुमार ने सुना दिए। किसको सुनाए, बोले पापाचारी सारमेय, उस पापी कुत्ते को, जीवन भर भक्ष अभक्ष सब खाता रहा, ऐसे उस मरणासन्न कुत्ते को मरण समय जीवेंद्र कुमार ने दया करके नमस्कार पद सुना दिए, तो वो भी दैवम सौख्यम प्राप्त, देव गति के सुख को प्राप्त हो गया, वो यक्ष बन गया देव। फिर यत अमलई ही मणि भी ही जाप्य ही जलपन, जो निर्मल यानी शुद्ध रत्नों की मालाओं से आपके नाम का या आपके मंत्रों का जाप जपने वाले हैं, वो वासवश्री प्रभुत्वम लभते उपलभते, इंद्र के वैभव के प्रभुत्व को यदि प्राप्त कर लेते हैं तो कह संदेह, इसमें शंका की बात ही कहाँ रही। अरे जब कुत्ता यक्ष बन गया तो फिर अशुद्ध रत्नों की माला से जो आपके नमस्कार चक्रम त्वन नमस्कार चक्रम, आपके नमस्कार समूह को, नमोकार मंत्र को अगर जपेगा तो उसको इंद्र का वैभव मिलना कौन सी बड़ी बात है। कह संदेह, उसमें संदेह कहाँ रहा। जब कुत्ता नमोकार मंत्र एक बार सुनकर देव बन गया तो फिर नमोकार मंत्र अच्छी मालाओं के द्वारा जपने वाला, मणि भी है, मणियों की माला बताइए इसमें मणियों। अब देखो लोग कंजूसी करते हैं कि अब गाड़ी वगैरह देखो और मकान देखो, बंगला देखो और टेलीविजन देखो तो एकदम टॉप क्वालिटी के, लेकिन जाप करने में ऐसी कंजूसी करते हैं। अब वो यहाँ की मालाओं को देख करके एकदम ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आप लोग पिक्चर देखते समय किसी को तकलीफ में देख कर ऐसा करते ना, बस इन मालाओं को देखकर यही भाव आता है मन में। ये समाज की दुर्दशा का प्रतीक है, यानी मानसिक दरिद्रता, यानी मालाएं ऐसी होनी चाहिए। अब फिर आप कहोगे कि चोरी का डर, अरे चोरी का डर तो आप उसकी भी व्यवस्था करो ना, सब कुछ हो सकता है, बहानेबाजी नहीं, अगर करना चाहें तो कोई बात असंभव नहीं है। मालाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए अपने पास। अब देखिए माला अपनी खुद की माला रखनी चाहिए आपको, मंदिर के भरोसे क्यों बैठे हो। तो यहाँ क्या लिखा है, अब आप सोचोगे भाई मैं माला फेर रहा हूँ तो इंद्र बन जाऊंगा, कभी नहीं बनने वाले, ऐसी मालाओं से इंद्र पद नहीं होता। जब द्रव्य आपका गलत है तो फिर भाव कहाँ से सही हो सकता है। गृहस्थ अवस्था में क्या कहा है शास्त्रों में, कि गृहस्थों के भाव द्रव्याश्रित होते हैं, इसलिए द्रव्यस्य शुद्धि अधिगम में यथानुरूपम, जितना मतलब उसके अनुरूप जितनी शुद्धि हो सकती है उसको अधिगम में प्राप्त करना ही चाहिए। वहां लापरवाही या फिर बेईमानी या फिर कुछ आनाकानी नहीं चलती। जो द्रव्य मानी, ये जो चढ़ाने वाले द्रव्य इनकी भी बात है, और फिर जिन द्रव्यों से आप धर्म ध्यान करना चाहते हैं, उपलक्षण समझ लो, ये जैसे पूजा करना चाह रहे हैं तो पूजा के द्रव्य कहलाएंगे, उद्देश्य क्या है, धर्म ध्यान। तो इसी प्रकार धर्म ध्यान के और भी जो आलंबन है वो भी श्रेष्ठ होने चाहिए। जब आर्थ ध्यान के आलंबन आप A1 क्वालिटी के रखते हैं, कहाँ कहाँ से, अमेरिका से, जापान से, सब जगह से टेलीविजन और फिर VCR और सब दुनिया भर के साधन आप उपलब्ध करा लेते हैं, तो फिर यहाँ जिनेंद्र भगवान की अर्चना में ऐसी दरिद्रता क्यों। अभी संभवतः यही कारण है कि अपनी मानसिक दरिद्रता के कारण दिगंबर समाज उतना समृद्ध नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि इस आराधना से तो एक अजैन व्यक्ति भी इतना समृद्ध हो सकता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस आपके भावों में समृद्धि आ जाए तो फिर बाहर की समृद्धि कितनी देर लगने वाली है, अपने आप चली आएगी। अभी पहले आपने देखी थी गाथा कि लक्ष्मी की इच्छा करता है मनुष्य लेकिन आराधना नहीं करता, फिर कैसे काम बनेगा? तो इसलिए आराधना में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए भगवान के चरणों की पूजा की महिमा, अर्हत चरण सपर्या महानुभावम महात्मनाम अवदत बेकह प्रमोद मत्तह कुसुमेन एकेन राज गृहे। मेकह छपा है उसको बेकह कर लीजिएगा, अगर मेकह छपा हो तो बेकह है ना, तो ठीक है। तो अर्हत चरण सपर्या महानुभाव, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा का महान प्रभाव किसने बताया? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि महात्मा नाम बड़े बड़े महान दिग्गज राजा महाराजा मंडलेश्वरों के लिए अरहंत भगवान के चरणों की पूजा की महिमा दर्शाने वाला प्रमोद मत्त भेक है। खुशी से पागल एक मेंढक था जो मरा रास्ते में, लेकिन राजा के हाथी के पैर के नीचे दबकर मरकर भी राजा बाद में पहुंचा समवसरण में, वो देव बन करके राजा से पहले समवसरण में आ गया वो मेंढक। और फिर जब राजा पहुंचा और उसने मेंढक का चिन्ह देखा देवों के देव के मुकुट पर, तो गौतम स्वामी से शंका की कि ये क्या है, देव के मुकुट पर तिर्यंच का चिन्ह? बोले कि अभी अंतर्मुहूर्त पहले ये जो था उसने वही चिन्ह अपने मुकुट में लगाया है, मेंढक की पर्याय ने उसको देव पद प्रदान किए, क्योंकि उस समय वो भक्ति करने के लिए पूजा के लिए एक फूल लेकर चला था तुम्हारी नगरी से, पर तुम्हारे ही हाथी के पैर के नीचे दब गया। राजा को दुख हुआ, लेकिन वहाँ जितने लोग उपस्थित थे सब समझ गए कि पूजा भले न कर पाया हो लेकिन पूजा की भावना उसके अंदर भरी हुई थी, इसलिए मुंह में फूल लेकर के वो दब गया हाथी के पैर के नीचे, पर पूजा के भाव से महर्दिक सम्यक दृष्टि सौधर्म स्वर्ग का देव बना और आकर के उसने रत्नों से पूजा की भगवान की, और कल्प वृक्षों के फूलों से और विमान के द्रव्यों से। तो फिर जो साक्षात पूजा करने वाले हैं, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा, उनको मुक्ति मिल जाए तो किमु, कौन सी बड़ी बात है। जब पूजा के भाव करने वाला मेंढक देव बन सकता है तो पूजा करने वाला मनुष्य आगामी काल में सिद्ध पद को प्राप्त करे तो कौन सी बड़ी बात, जरूर कर सकता है। तथा धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्ति परः सुहृद् भवभृतां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं ददे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय। सुंदर काव्य है। धर्म सर्व सुखा करो, ये संस्कृत भाषा में जो व्याकरण है ना, व्याकरण में कारक प्रकरण आता है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, ऐसे कारक होते हैं ना सप्त कारक। तो उन कारकों में धर्म की महिमा बताइए। धर्म ये प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक, सर्व सुखा करो, क्या करता है धर्म? सब सुखों का आकर है, खदान है, सब सुखों का स्थान है। और बुधाह धर्मं चिन्वते, फिर धर्म को कर्म कारक में धर्मम ये रूप बनाए, तो उसके लिए फिर वाक्य क्या बनाया, बुधाह जो बुद्धिमान है वो धर्मं चिन्वते, धर्म का ही चयन करते हैं संचय करते हैं। धन का संचय करने की आवश्यकता नहीं है, उतनी आवश्यकता नहीं है जितना धन का धर्म का संचय करने की आवश्यकता। तो बुद्धिमान लोग धर्मं चिन्वते, धर्म को चुनते हैं, धर्म का चयन करते हैं। और फिर तृतीया में धर्मेण ये रूप बनेगा, करण कारक। तो धर्मेणैव धर्म से ही शिव सुखम समाप्यते, शिव सुख संप्राप्त किया जाता है, मोक्ष का सुख धर्म से ही प्राप्त किया जाता है। फिर धर्माय ये चतुर्थी हो गई, धर्म के लिए तस्मै धर्माय उस धर्म के लिए नमः नमस्कार हो। फिर पंचमी विभक्ति क्या, धर्म से धर्मात् परह सुहृद, धर्म से बड़ा सुहृद यानी मित्र नास्ति नहीं है। किनका मित्र? तो बोले भव भृताम, भव धारण करने वालों का, धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा मित्र नहीं है, भाव धारण करने वाले यानी संसारी प्राणी। फिर षष्ठी लगा लो, धर्मस्य संबंध कारक है। पंचमी जो थी अपादान, षष्ठी जो है संबंध कारक। संबंध में क्या, धर्मस्य, धर्म का। अब धर्म का क्या, इस पर से एक वाक्य बना दिया, धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। तुलसीदास जी ने भी ये बात स्वीकार की, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाणिए जब तक जब लग घट में प्राण। फिर सप्तमी में धर्मे यानी धर्म में, अब इसका वाक्य क्या बनेगा, अहम धर्मे प्रतिदिनम चित्तम दधे, मैं धर्म में प्रतिदिन अपना मन दधे यानी लगाता हूँ, धारण करता हूँ। फिर संबोधन में क्या, हे धर्म, देखो धर्म को ही संबोधन दे रहे हैं, धर्म कोई आदमी नहीं है लेकिन धर्म को ही संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे धर्म माम पालय, मुझे बचा लेना। पालय का अर्थ क्या है, मेरी रक्षा करना, मेरा पालन करना। सुकुल जन्म विभूति रनेक धा, कौन सा छंद है ये, 12 अक्षरों वाला छंद है। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, ये छंद शास्त्र भी बड़ा मजेदार है। तो ये द्रुत विलंबित छंद, उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश, ये वही छंद है। तो उदक चंदन तंडुल बोलिए, तंदुल नहीं है, तंदुल तो उस मछली का नाम है, तंदुल मच्छ। और ये तंडुल शब्द, तंडुल यानी चावल होता है। सकल जन्म विभूति रनेक धा, प्रिय समागम सौख्य परंपरा, नृप कुले गुरुता विमलन यशो, भवति धर्म तरुह फलमी दृशम। धर्म तरु का फल ऐसा होता है, कैसा, तो पहली बात क्या कहें, सुकुल जन्म, अच्छे कुल में जन्म प्राप्त होना। फिर विभूति अनेकधा, अनेक प्रकार की विभूतियां प्राप्त होना। फिर प्रिय समागम, प्रियजनों का समागम हो जाना। फिर सौख्य परंपरा, सुखों की परंपरा, माने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे सुखी सुख मिलते रहें, धर्म का फल है। फिर नृप कुले, राजा के कुल में गुरुता, गुरुता का अर्थ गुरुपना प्राप्त होना, बड़प्पन प्राप्त होना, राजा के कुल में बड़प्पन मिलना। और विमलम यशो, निर्मल यश प्राप्त होना। अब यश दो प्रकार के होते हैं, एक निर्मल यश होता है और दूसरा बनावटी यश, माने ऐसी झूठी प्रशंसा और कीर्ति फैला करके यशस्वी बन गए, बाद में जब पोल खुली तो पता चला कि कुछ भी नहीं है, ये स्थिति रहती है। तो यहां पर धर्म के द्वारा क्या होता है, निर्मल यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ 431 गाथाओं तक धर्म की महिमा बताई, आगे भी और सुंदर बातें आने वाली है। अंगों का वर्णन करके फिर आचार्य महाराज ने कहा कि मोह पिशाच से भुलाया गया जीव धर्म को नहीं समझता, और किसी तरह कठिनाई से समझ भी लेता है तो उसका आचरण नहीं कर सकता। जिस प्रकार जीव पुत्र स्त्री काम भोगों के प्रति प्रेम रखता है, वैसा प्रेम यदि जिनेंद्र भगवान के धर्म के प्रति हो जाए तो अनायास उत्तम सुख को प्राप्त कर ले। मनुष्य लक्ष्मी की वांछा करता है लेकिन धर्म का आदर नहीं करता, बीज के बिना धान्य की उत्पत्ति कैसे संभव है। धर्म बीज है और सुख उसका फल है। और जो धर्म में स्थित हो जाता है, कोई बिरला जीव है जो धर्म में अपने आप को स्थापित कर लेता है, ऐसा धर्मस्थ जीव शत्रु वर्ग के प्रति क्षमा भाव धारण करता है, पर द्रव्य का त्याग कर देता है और पर स्त्री को माता के समान गिनता है, तब तक सर्वत्र कीर्ति होती है, तब तक सर्वत्र उस पर लोग विश्वास करते हैं, तब तक सबके प्रति वह प्रिय वचन बोलता है और तब तक वह अपने मन को शुद्ध करता रहता है। कहने का तात्पर्य जब तक जीव धर्म में स्थित रहता है तब तक उसके अंदर इस प्रकार के भाव देखे जाते हैं, यानी शत्रु वर्ग के प्रति क्षमा भाव, पर संपत्ति का त्याग, पर स्त्री को माता के समान गिनना, सर्वत्र कीर्ति की प्राप्ति होना और सब में विश्वस्त होना, सभी को उसके ऊपर विश्वास रहता है, वो सब कुछ मधुर बोलता है, कड़वे वचन नहीं बोलता और अपने मन को वह शुद्ध रखता है जब तक उसके पास धर्म है। उत्तम धर्म से युक्त तिर्यंच तो श्रेष्ठ देव बन जाता है, चांडाल सुरेंद्र बन जाता है, और इसके आगे जो टीका थी उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी कि कौन से जीव कहाँ कहाँ तक के उत्पन्न होते हैं। तो इसमें एक ही भाव स्तोत्र का काव्य था, प्रापद दैवम, 12वां काव्य होता है वैसे। उसमें लिखा था कि जीवक यानी जीवंधर कुमार ने किसी मरणासन्न कुत्ते को तव नुति पदई है, हे भगवान आपकी स्तुति संबंधी पदों से संबोधित किया। यानी कुत्ता मरणासन्न हो गया था और जीवंधर कुमार उसको कुछ सुनाने लगे, नमस्कार मंत्र आदि। वो कुत्ता जीवन भर पापाचारी रहा, यानी भक्ष अभक्ष के विवेक बिना, हिंसा अहिंसा को जाने पहचाने बिना कुछ भी प्रवृत्ति करता रहा, लेकिन मरण के समय उसको जीवंधर कुमार द्वारा नमोकार मंत्र मिल गया तो वह कुत्ता भी दैवम सौख्यम प्राप्त, देवगति के सुख को प्राप्त हो गया। तो यत अमलई ही मणि भी जाप्य ही, शुद्ध मणियों की जाप्य यानी मालाओं द्वारा त्वन नमस्कार चक्रम जलपन, आपके नमस्कार समूह को जपने वाला वासव श्री प्रभुत्वम उपलभते, इंद्र के वैभव का स्वामित्व यदि उपलब्ध कर लेता है तो कह संदेह, इसमें संदेह की बात कहाँ रही, बिल्कुल कर सकता है। फिर दृष्टांत एक समंतभद्र स्वामी द्वारा दिया हुआ रत्नकरण श्रावकाचार्य का, उसको यहाँ पर ले लिया कि अरहंत भगवान के चरणों की पूजा का प्रभाव, महान प्रभाव, बड़े बड़े दिग्गज मनुष्यों के सामने, देवताओं के सामने एक मेंढक ने बता दिया। कैसा था मेंढक? प्रमोद मत था, खुशी से मत था, मतवाला था। और कैसे बतलाया? एकेन कुसुमे में, मात्र एक पुष्प द्वारा उस मेंढक ने पूजा की महिमा को समवसरण में विराजमान सबके सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने प्रकट कर दिया। कहाँ पर? राजगृह, राजगृह नाम की नगरी है, अभी आजकल लोग राजग्रही बोलते हैं, राजग्रही नहीं है वो, स्वराघात तो अब जहाँ करना है वहाँ स्वराघात नहीं करेंगे और जहाँ नहीं है वहाँ पर स्वराघात करके राजग्रही बोलते हैं। राजगृही, राजगृह नगर है, राजगृही बोलना हो तो गृही बोलो, लेकिन राज के आगे स्वराघात नहीं लगाना। राजगृह नगर में एक मेंढक ने ये कार्य करके दिखला दिया। महात्मा नाम, बड़ी बड़ी महान आत्माओं के सामने अवदत उस मेंढक ने बता दिया कि कितना पूजा का महत्व, भगवान की चरण आराधना का कितना महान प्रभाव होता है, वो उसने प्रकट कर दिया। उसकी कथा आप सुन चुके हैं वैसे। तथा फिर 7 कारकों के माध्यम से एक काव्य दिया, पहला कर्ता कारक, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और अंत में फिर संबोधन को भी ले लिया। तो धर्म प्रथमा के एक वचन में इसको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसा भी नाम दिया गया है व्याकरण में। प्रथमा यानी कर्ता कारक, द्वितीय यानी कर्म कारक, तृतीय यानी करण कारक, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण। ये सात के बाद में फिर एक संबोधन भी होता है, उसको संबुद्धि भी कह सकते हो, संबोधन भी कह सकते हैं। तो इन सातों कारकों में देखिए, धर्म, देखो रूप कैसे बनेंगे, धर्म प्रथमा के एक वचन में, धर्मम द्वितीय के एक वचन में, धर्मेण तृतीय के एक वचन में, फिर चतुर्थी के एक वचन में क्या बनेगा, वो सब काव्य में देख करके बता दे जाओ, धर्माय, फिर पंचमी के एक वचन में धर्मात् त बनेगा, वो इधर क्या है कि नास्ति का न होने के कारण त की संधि हो गई है और त से न बन गया है, डबल न दिख रहा, धर्मान्नास्ति मिल गया, जिनके पास वो प्रति हो वो, बाकी लोग तो सिर्फ श्रद्धा रखो। और फिर षष्ठी के एक वचन में क्या है, धर्मस्य, सप्तमी के एक वचन में धर्मे, और संबोधन में हे धर्म। तो इस तरह ये सब कारकों में बना करके एक शार्दूल विक्रीड़ित छंद बना लिया और इसमें धर्म की महिमा बतला दी। धर्म कैसा है, तो सर्व सुखा करो हित करो, सबके लिए सुखों का आकर है या सब सुखों का आकर है, आकर का अर्थ होता है स्थान, और हित करो हित करने वाला है। फिर द्वितीय में क्या बना है, बुधाह धर्मन चिन्वते, बुद्धिमान लोग धर्म का चयन करते हैं, संचय करते हैं। फिर शिव सुखम तृतीय में देखिए क्या बना है, शिव सुखम धर्मेणैव समाप्यते, शिव सुख जो होता है मोक्ष सुख, वो धर्म द्वारा ही समाप्यते का अर्थ समाप्त नहीं होता, समाप्यते का होता है संप्राप्त होता है। नहीं तो ये शब्द सुनकर के दिमाग चकरा जाए, समाप्यते मोक्ष सुख समाप्त हो जाता है धर्म से, ऐसा अर्थ नहीं निकालना वहां, समाप्यते का अर्थ होता है संप्राप्त होता है यानी उपलब्ध होता है। तस्मै धर्माय नमः, उस धर्म के लिए नमस्कार हो जिससे इतने सारे काम होते हैं या जिसमें ये विशेषताएं हैं। फिर उसके आगे भी बता रहे हैं, धर्मात् परः सुहृद् भवभृतां नास्ति, धर्म से बढ़कर कोई सुहृत, सुहृत का अर्थ होता है शोभनम हृद यस्य सह सुहृद, सुंदर हृदय वाला, सुंदर हृदय वाला कौन होता है, मित्र। तो धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा मित्र भवभृताम भव धारण करने वालों का नास्ति नहीं है, यानी संसार में भटकने वाले जीवों के लिए धर्म से बड़ा कोई दूसरा मित्र नहीं है। और फिर क्या कह दिया, दया धर्मस्य मूलम, दया जो है धर्म का मूल है, मूल का अर्थ मूल यानी जड़, पेड़ में जैसे मूल होता है ना, वैसे ही धर्म का मूल दया है। अब दया को राग कहकर विभाव कहकर के आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, शुभ राग कह दो और फिर अरे हे है ऐसा फलाना ठिकाना, इतनी उतावली नहीं करना, वो जो है सो है, वो एक अलग बात है, राग हे है वो तो एक तत्व दृष्टि बात अलग होती है, लेकिन प्रवृत्ति का भी विवेक होना चाहिए ना सम्यक दृष्टि में, तत्व विवेक और प्रवृत्ति विवेक, ये दोनों यदि न हो तो फिर ज्ञान व्यर्थ है। तत्व विवेक यानी कौन सा तत्व हे है कौन सा उपादेय है, इस बात की समझ, इस बात का विवेचन, विवेचनम पृथक्करणम इत्यर्थ है, विवेक का अर्थ होता है इतना भेद उसकी दृष्टि में आना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हितकारी क्या अहितकारी, इसकी समझ को विवेक कहते हैं। और प्रवृत्ति विवेक किसको कहते हैं, कि अब हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये तो ठीक है हे और उपादेय तो सही बात है कि मोक्ष ही उपादेय और बाकी सब कोई काम के नहीं है, जीव तत्व है वो अपना स्वरूप है, अपन जीव है, और फिर उपादेय तत्वों में मोक्ष उपादेय है, संवर निर्जरा भी रास्ते के वो है, क्या बोलते हैं मंजर या मंजर, मतलब रास्ते में मिलने वाली धर्मशालाएं हैं संवर निर्जरा, वो कोई आत्मा का स्वभाव थोड़ी है संवर और निर्जरा, संवर निर्जरा साधन है, साध्य नहीं है। तो ये सारी बातें समझ ली, लेकिन अब अपने को इस भूमिका में क्या करना, ये विवेक अगर नहीं हो तो फिर सब बेकार है। तो धर्म का मूल दया है, यहाँ पर क्या कहा, धर्म का मूल दया, और दया का अभाव होता नहीं है। करुणा जो होती है वो नीचे से लेकर सिद्ध भगवान तक जीव का स्वभाव है ना, करुणा, करुणा विभाव है ही नहीं। अब ये ठीक है कि करुणा के साथ जो राग भाव रहेगा वो विभाव है, लेकिन आप करुणा को ही विभाव कहने लग जाओ तो फिर ये गणित गड़बड़ा जाएगा। करुणा विभाव नहीं है, करुणा के साथ जो राग है वो विभाव। यद्यपि शुभोपयोग में पंचास्तिकाय ग्रंथ में जीवस साणुकंपो, तो अनुकंपा सहित जो उपयोग है वो शुभोपयोग का शुभ राग है, तो वहाँ पर अपेक्षा है। अब वहाँ पर ये तात्पर्य मत लगा लो कि अनुकंपा ही राग है, जैसे कह दिया कि देवायु का कारण क्या, सम्यक्तंच, सम्यक्त देवायु का कारण, वैमानिक देवों की, तब सम्यक्त आयु का बंध का कारण है क्या? अब देखो फिर तत्व से विचार करें तो सम्यक्त बंध का कारण हो सकता है क्या? दर्शन विशुद्धि तीर्थंकर प्रकृति का कारण है, सम्यक्त देवायु का कारण है। तो इसमें अगर बारीकी से समझो तो फिर समझ में आएगा कि नहीं, साक्षात सम्यक दर्शन देवायु का कारण नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि के अंदर पाया जाने वाला जो राग होता है वो जब भी आयु बंद होगा तो देवायु का ही बंद कराएगा, अगर यहाँ मनुष्य तिर्यंश होगा तो बंद का कारण कौन ठहरा, राग या सम्यक दर्शन? तो सीधा सीधा हिसाब ये है कि जो मोक्ष का कारण होता है वो बंध का कारण नहीं होता। मोक्षोपायो न बंधनोपाय, ऐसा उसका गणित है। तो धर्म से बढ़कर के संसारी जीवों का कोई दूसरा मित्र नहीं है, धर्म का मूल दया है, इसलिए दया को कभी छोड़ना नहीं। जितनी जितनी वृद्धि होगी, सबसे द बेस्ट एडवाइस दैट कैन बी गिवन टू एनीबॉडी इज बी काइंड, दो शब्दों का उपदेश है। संसार का सर्वोत्तम उपदेश अगर किसी को दिया जा सकता है वो सिर्फ इतना है, दयालु बनो, खत्म काम, इससे बड़ा कोई उपदेश नहीं है। ये सब धर्मों की एक मान्यता है, माने इस मामले में सारे धर्म सारे मजहब एक मत है, बी काइंड, दयावान बनो, दयालु बनो, सर्वश्रेष्ठ उपदेश। तो यहां पर भी क्या कह रहे हैं, धर्मस्य मूलम दया, अब दया ही नहीं है, कठोरता है अपने अंदर, क्रूरता है, तो फिर धर्म तो बहुत दूर की बात हो गई। दया नहीं है तो सारी बातें बेकार है। फिर जितना तत्व ज्ञान है, स्वाध्याय है, और फिर जितने कुछ आप जो कुछ भी बोलना उलना जान लेते हैं, सीख लेते हैं, सब जनता को इकट्ठा कर लेते हैं, ये सारी चीजें जो है एक तरफ है। दया हो तो सार्थक है सब। और फिर किसी ने ये भी कहा है कि करुणा शेष गुणों की जननी है। अब अगर माई न हो तो फिर बच्चे कहाँ से हो, तो करुणा शेष गुणों की जननी है, मतलब शेष गुण का अर्थ शेष जितने भी गुण होते हैं वो सब एक दया के ऊपर आश्रित होते हैं। धर्म में अहम चित्तम दधे प्रतिदिनम, धर्म में मैं अपने चित्तम दधे मन को धारण करता हूँ, दधे का अर्थ होता है धारण करता हूँ यानी लगाता हूँ, प्रतिदिनम, सिर्फ आज नहीं, अभी एक अच्छा श्लोक सुनने मिल रहा है तो चलो अब मन लगा रहे हैं धर्म में, ऐसा नहीं, प्रतिदिनम अहम धर्मे चित्तम ददे, प्रतिदिन मैं धर्म में अपने मन को लगाता हूँ, हे धर्म माम पालय, मेरी रक्षा करना। फिर इसके बाद एक द्रुत विलंबित छंद में कहा था, सुकुल जन्म विभूति रनेक धाम, सुकुल में जन्म, ये साथ साथ छप गया, अलग अलग होना चाहिए था, सुकुल जन्म और फिर विभूति जो है उसके बीच में गैप होना चाहिए, छपने में एक साथ हो गया, विभूति रनेक धाम। सुकुल जन्म का अर्थ होता है सुकुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म होना, और अनेकधा विभूति का मतलब अनेक प्रकार की विभूति, प्रिय समागम, प्रिय जनों का समागम और सौख्य परंपरा, सुखों की परंपरा, एक के बाद दूसरा सुख, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार सुखों की परंपरा, नृपकुले गुरुता, राजाओं के कुल में गुरुता यानी बड़प्पन की उपलब्धि होना, और विमलन यशो, निर्मल यश उपलब्ध होना, ये सब धर्मतरो ईदृशम फलम भवति, धर्म रूपी वृक्ष का ऐसा फल भवति यानी होता है। अग्गीव यहोदि हिमम होदि भुयंगो वे उत्तमम रयणम जीवस्य सुधम माधु देवाव्य किंकरा हुन्ति। अग्गीवीय हिमम होती, अग्नि बर्फ बन जाती है या ठंडी हो जाती है, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा में हो गया था। सुधम माधु, सुधर्म के प्रभाव से। और जीवस उस जीव के लिए भुयंगो वे उत्तमम रैणम होती, भुजंग अर्थात सर्प भी उत्तम रत्न हो जाता है। सौम्या सती की कथा सुनी आपने, उनकी सास ने एक मटके के अंदर जहरीला नाग रखवा दिया था सपेरे से खरीद कर, और पति ने कहा कि मैं देख तेरे लिए कितनी अच्छी माला लेकर के आया। उसने ऐसे हाथ डाल करके निकाला, बहुत सुंदर माला थी, माला ही निकली। सतीत्व के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से वो माला ही निकली। फिर आगे जो घटना घटी है तो उसके ऊपर दोषारोपण आ गया था, यानी पति ने जैसे ही उसको अपने हाथ में लिया तो फिर वो नाग बन गया और उसको डस लिया, तो राजा के पास शिकायत कर दी उसकी सास ने, और फिर इसकी पेशी हो गई। फिर राजा ने कहा कि तुम इस प्रकार के पाप करती हो, और फिर सास ने और भी आरोप लगा दिए थे कि इसके और भी गलत संबंध होंगे, तभी तो मेरे पुत्र को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ये उनको अपने पति को जीवित रख करके सुखी नहीं रह सकती थी, तो ऐसे सब दोषारोपण के बावजूद राजा ने कहा कि अच्छा तुम्हारा क्या कहना है। तब सौम्या सती बोलती है कि मेरा कुछ नहीं कहना, मेरा यही कहना है कि उसमें से तो मैंने माला ही निकाली थी, अब इनके हाथ में यदि नाग हो गया तो फिर मैं इसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, और ये कैसे हो गया मेरी समझ में नहीं आया। तब फिर बोले कि कहाँ है वो मटकी, तो उस मटकी में से फिर से उसको निकालने के लिए बोला, तो फिर से इसने ऐसे उसमें से माला ही निकाली। तब राजा को समझ में आया कि बात वहीं दाल में काला है, ये तो पवित्र है। और उसके बाद फिर जो भी हुआ वो लंबी कथा है, वैसे बृहत कथा कोश में उसका विस्तार है, सौम्या सती की कथा। और उसमें सौम्या सती के जो पिताजी थे वो एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, तो वो जब रोगी हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, तब नगर सेठ ने जो उनकी सेवा की है कि नहीं वो हमारे जिन धर्म को मानने वाला सहधर्मी बंधु है, भले ब्राह्मण हो लेकिन सहधर्मी बंधु है, तो उनकी कुटिया पर जाकर के सेठ ने सेवा की थी, तो वहाँ पर वात्सल्य अंग का इतना सुंदर वर्णन मिलता है कि बिल्कुल पढ़ करके हृदय गदगद हो जाए कि कभी भी किसी सहधर्मी पर संकट आने पर अपने सब आवश्यक कार्यों को छोड़ करके जो धार्मिक मनुष्य सम्यक दृष्टि जीव होता है वो वात्सल्यपूर्वक उसकी सेवा में लग जाता है, उसके संकट को दूर करता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की विपत्ति को दूर करने के लिए अपने ध्यान को छोड़ दिया और वहाँ आकर विक्रिया रिद्धि का प्रयोग करके उपसर्ग निवारण किया। तो भुजंग भी उत्तम रत्न बन जाता है और देवा भी किंकरा होती, देव भी किंकर यानी सेवक बन जाते हैं। रैण मंजूषा सती, सती रैण मंजूषा पर धवल सेठ की कुदृष्टि पड़ी और धवल सेठ ने श्रीपाल को समुद्र में फेंकवा दिया, और रैण मंजूषा के शील हरण का जब उसने प्रयत्न किया तब जल देवता ने आकर जो उसकी रक्षा की है सती की, तो धवल सेठ को तो मार मार कर बेहाल कर दिया उसने, मुंह में आंखों में कानों में रेत भर दी। और फिर जब उसने सती के चरणों में क्षमा मांगी तब देवता ने आकाशवाणी की कि हे सती, तुम्हारे शील को देवता भी खंडित नहीं कर सकते, फिर एक धवल सेठ क्या, यहाँ करोड़ों धवल सेठ भी आ जाए तो हम देव तुम्हारे सेवक हैं। जो धर्म के सेवक होते हैं देवता उनके सेवक होते हैं, इसलिए तुम कभी चिंता मत करना, हमेशा निश्चिंत रहना, और तुम्हें तुम्हारे पति का समागम होगा, समय लगेगा लेकिन होगा अवश्य। इस प्रकार से उन्होंने ये वो कथा आती है श्रीपाल कथा में, चरित्र में बहुत लंबा वृत्तांत है, लेकिन अभी अपने पास एक रविवार बाकी है।